में थे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोताओ नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। प्रिय श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से यहूदा नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। इसका मुख्य विषय है विश्वास के लिए संघर्ष। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और अपने प्रियों के साथ आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से नए नियम के यहूदा नामक पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम सब देख रहे हैं कि किस प्रकार झूठे शिक्षक और झूठे बातों को लाने वालों को परमेश्वर कलीसिया के सामने से प्रदर्शित करता है। कहने का अर्थ है कि झूठे शिक्षक चुपचाप कलीसिया में प्रवेश कर गए हैं और यहूदा उनको हमारे सामने रखता है। तो मेरे मित्रों, इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के वचन के लिए, आज के वचन पर आशीष के लिए उसकी सहायता मांगें। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हमारे जीवन में दिया है ताकि हम आपके जीवित और सामर्थी वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तो हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को जो इस समय अलग अलग स्थानों पर बैठकर रेडियो के निकट में आपके वचन को सुनने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमारी विनती है कि आप उन्हें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि प्रत्येक श्रोता आपके वचन को सुनकर अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त कर सके। इसी के साथ हम प्रार्थना करते हैं उन श्रोता भाई बहनों के लिए जो अपने जीवन में निराश हैं, परेशान हैं, चिंता और तनाव में हैं, दबाव में हैं, बीमार अवस्था में हैं। प्रभु जी, आप उन पर भी कृपा दृष्टि करें, उनके जीवन को स्पर्श करें, उनसे बोले और बातचीत करें, आज के वचन के द्वारा उन्हें सामर्थ्य दें। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम सब देख रहे हैं कि यहूदा आरंभिक कलीसिया को चेतावनी दे रहा है कि उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो विश्वास का नाम रखकर या धरकर परमेश्वर और प्रभु यीशु की निंदा के काम कर रहे थे। अतः वे उनके बहकावे में आकर सच्चे विश्वास से न मुकर जाएं, क्योंकि परमेश्वर विश्वास न करने वालों को नष्ट कर देता है, जैसे उसने जंगल में इसराइल की पूरी एक पीढ़ी को नष्ट किया था। उसने तो स्वर्गदूतों को भी दंड के लिए बंदी बनाकर अंधकार में रखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर से विद्रोह किया था। इसी प्रकार मसीह के अनुयायी यदि विश्वास से टल गए तो वे भी परमेश्वर के दंड के भागी होंगे। वह एक और उदाहरण देता है, सदोम और अमोरा। मेरे मित्रों, जैसा कि हम पिछले अध्ययन में इसके बारे में देखे हैं, वह कुरंत की कलीसिया को लिखी पहली पत्री में पुनरुत्थान का क्रम हमें व्यक्त करता है। पहला कुरंथियों की पत्री 15 अध्याय उसके 23 से 25 पद में लिखा है, पहला फल मसीह और फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद अंत होगा। उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा, क्योंकि वह जब तक अपने बैरियों को अपने पांव तले ना ले आए तब तक उसका राज्य करना आवश्यक है। अतः सहस्त्र वर्षीय प्रभु राज में दुष्ट आत्माओं को दंड दिया जाएगा। मेरे प्रियो, धर्मशास्त्र में स्वर्गदूतों के दंड के विषय कहने के लिए बहुत कुछ है। मैं एक और संदर्भ देता हूं, पहला कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, तो क्या सांसारिक बातों का निर्णय ना करें? यदि पौलुस नहीं बताता तो हम तो इन बातों को कभी भी नहीं जान पाते। हम सहस्त्र वर्षीय राज्य में अपने प्रभु के साथ होंगे। हम शायद पृथ्वी से नए यरूशलेम आया जाया करेंगे। वह हमारा अनंत धाम होगा। प्रभु राज के इन हजार वर्षों में कभी न कभी पतित स्वर्गदूतों का न्याय होगा। यद्यपि हम स्वर्गदूतों से कम बनाए गए हैं, थोड़ा कम बनाए गए हैं, हम पतित स्वर्गदूतों के न्याय में सहभागी होंगे। मेरे प्रियो, पत्रस इन पतित स्वर्गदूतों के न्याय का एक अलग परिदृश्य दर्शाता है जो यहूदा के विचारों से मेल खाता है। दूसरा पत्रस की पत्री 2 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें। अतः ये स्वर्गदूत न्याय के दिन तक वहां पर बंदी बनाकर रखे गए हैं। मेरे मित्रों, इस पतित स्वर्गदूतों का दूसरा वर्ग आज संसार में स्वतंत्र घूम रहा है। इनके विषय में कुछ आवश्यकता से अधिक कल्पनाएं की गई हैं, परंतु वे किसी न किसी तथ्य पर आधारित हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20 अध्याय उसके 10 पद में इनके विषय में लिखा है, उनके भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। मित्रों, हम जानते हैं कि आग आत्माओं को कष्ट नहीं पहुंचा सकती है, परंतु आग उनकी पीड़ा के कारण की उपमा है। इस पद से यह भी स्पष्ट होता है कि शैतान नरक में नहीं है, वह हमारे शहरों में व्यस्त है। उसके पास लौकिक और अलौकिक सहायकों की बहुत बड़ी सेना है जिसमें अनजान मनुष्य भी सहभागी हैं। अंतिम दिनों में महाक्लेश में विश्वासियों इसराइल के सताव का उत्तरदायी शैतान ही होगा। वह स्वर्ग से निकाल दिया जाएगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12 अध्याय के 9 पद में लिखा है, तब वह बड़ा अजगर जो शैतान कहलाता है पृथ्वी पर गिरा दिया गया। यही शैतान प्रभु राज में बंदी बना लिया जाएगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20 अध्याय उसके 1-3 पद में लिखा है, तब मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिसके हाथ में अताह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने पुराने सांप को जो शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और अंत में वह आग की झील में डाल दिया जाएगा। जैसा हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20 अध्याय उसके 10 पद में भी देख चुके हैं, परंतु वह इससे पूर्व 1000 वर्ष बाद थोड़ी देर के लिए फिर से खोला जाएगा। मेरे मित्रों, हम अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ते हुए देखेंगे सदोम और अमोरा का पाप। यहूदा की पत्री 1 अध्याय के 7 पद में लिखा हुआ है, जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराय शरीर के पीछे लग गए थे आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं। पूर्व काल के विधर्म के संबंध में यहूदा द्वारा दिया गया यह तीसरा उदाहरण है। उसने इसराइल के अविश्वास की चर्चा की और फिर अपनी पूर्वावस्था से गिरने वाले स्वर्गदूतों का उदाहरण दिया और अब वह सदोम और अमोरा का उदाहरण दे रहा है। उनका ऐसा विनाश हुआ कि आज शायद वे मृत सागर के नीचे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने इन नगरों की खोज कर ली है, परंतु मैं नहीं जानता कि सच क्या है। उनका स्थान इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि यह जानना कि परमेश्वर ने उन्हें समलैंगिकता के पाप के कारण नष्ट किया था। आज समलैंगिकता को संबंध कहा जाता है। वे विचार को मुक्त प्रेम कहा जाता है और हत्या को अस्थायी मानसिक असंतुलन तथा शराब पीने को सम्मानित व्यवहार कहा जाता है। मेरे प्रियो, शैतान इस संसार में नया शब्दकोश लाकर अपना काम उचित रीति से कर रहा है। उनके पाप का दंड हमारी पीढ़ी के लिए एक चेतावनी है। इस दिशा में बढ़ने वाली कोई भी पीढ़ी और सभ्यता को परमेश्वर अवश्य ही दंड देगा। आज हमारा देश बुराइयों में फंसता चला जा रहा है। प्रतिदिन हम एक नए रोग और नए संगठन, हत्या और व्यभिचार के बारे में सुनते हैं। मनुष्य इतना अधिक पापी होता जा रहा है कि उसे अब परमेश्वर से भी डर नहीं लगता। परंतु याद रखें कि परमेश्वर हर एक कामों को देखता है और वह अवश्य ही न्याय करेगा। यहूदा की पत्री में यहूदा आगे कहता है, विधर्म की शिक्षा देने वालों की पहचान, गलत शिक्षकों की पहचान हम कैसे करें। आइए हम पढ़ें यहूदा की पत्री 1:8 में लिखा है, उसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। हमें इन विधर्मी शिक्षकों से सावधान रहना है। 4 में यहूदा कहता है कि वे चुपके से आ गए हैं, वे छंदावेश में आ गए हैं, उनका विश्वास अलग है, वे जो हैं वो नहीं हैं, उसका दिखावा करते हैं। मेरे प्रियो, इस पद में यहूदा उनकी पहचान के 4 संकेत देता है। 1 संकेत को हम लोग देखेंगे, वे स्वप्नदर्शी हैं, वे कल्पना के संसार में रहते हैं। मेरे विचार में धर्म संबंधित मुक्त विचारकों ने सत्य का सामना कभी नहीं किया है। मुक्त विचारक रोमांचक तो हैं, परंतु कागजों पर ही अच्छे लगते हैं। सकारात्मक विचारों द्वारा समस्या का समाधान करना अच्छा है, परंतु नकारात्मक विचारों में भी बहुत शक्ति होती है। आज हमें ना कहना और हां कहना सीखना होगा। ये स्वप्नदर्शी हैं, अर्थात वे सत्य को नहीं देखते। वर्षों पूर्व मैंने एक महिला पत्रिका में पढ़ा था, पूर्व दिशा के पादरियों ने एक शपथ खाई थी, किसी भी युद्ध में भाग नहीं लिया जाएगा। कहने का अर्थ है, किसी को भी युद्ध में भाग नहीं लेना है। इनमें अति बुद्धिमान और प्रभावशाली पादरी भी थे। इस समुदाय का कहना था कि युद्ध समस्या का समाधान नहीं है, यह व्यर्थ है, आत्महत्या है और परमेश्वर का इनकार है, प्रभु यीशु की शिक्षाओं का इनकार है। उन्होंने बलपूर्वक कहा कि बुराई की जंजीर जो हमें युद्ध में बांधती है उसे तोड़ा जाना है। यह एक उदार विचार है, तथापि अनेक घटनाएं हमें कुछ और सोचने पर बाध्य करती है, मजबूर करती हैं। जब ये साहसी और सत्यनिष्ठ मनुष्य प्रचार मंच से युद्ध का तिरस्कार करते हैं, तो हमें स्मरण रखना है कि इन पादरियों ने इस विश्वास का अधिकार अपनी जीवनी से जीता है। जी हां, हमें यह बोध होना है कि हम एक बुरे संसार में रहते हैं और सच यह है कि आपको अपनी टांग अड़ाना ही होता है, आप बच नहीं सकते। जैसे एक सुदृढ़ टायर भी कठोर यात्रा में फट जाता है, पंचर हो जाता है। ये लोग स्वप्नदर्शी हैं, वे कल्पना के संसार में जी रहे हैं, जबकि यथार्थ में ऐसा हो नहीं सकता है। मेरे प्रियो, युद्ध न करना प्रभु यीशु की शिक्षा के विरुद्ध है। लूका रचित सुसमाचार 11:11 उसके 21 में लिखा हुआ है, जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है। अतः आत्मरक्षा के लिए हथियार उठाना आवश्यक है। प्रभु यीशु ने युद्ध में जाने वाले राजा का भी उदाहरण दिया था कि वह अपने सैन्य बल को जांचता है। लूकार्ची सुसमाचार 14 अध्याय उसके 31 पद में लिखा है, कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार न कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूं या नहीं। यीशु के कहने का अर्थ है कि एक बुद्धिमान राजा युद्ध जीतने के विषय में सोचता है। इन लोगों ने प्रभु यीशु की बात पर ध्यान नहीं दिया। जब प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को पहली बार भेजा था, तब उनसे कहा, मरकुस रचित सुसमाचार 6:7-9 पद में, मार्ग के लिए लाठी छोड़ और कुछ न लो। परंतु जब उसने उन्हें दुनिया की छोर तक जाने को कहा, तो उनसे कहा, लूकार्ची सुसमाचार 22:35-36 पद में, परंतु अब जिसके पास बटुआ हो वह उसे ले ले, और वैसे ही झोली भी, और जिसके पास तलवार ना हो वह अपने कपड़े बेचकर एक मोल ले। युद्ध में भाग ना लेना एक अच्छी बात है, परंतु हमें सच का सामना भी करना है। यह संदेश शांति के समय रविवार की आराधना के लिए अच्छा है। अब दूसरी बात वह कहता है, इन झूठे शिक्षकों का दूसरा लक्षण जिसका उल्लेख यहूदा करता है वह है, वे अपने शरीर को अशुद्ध करते हैं। जी हां, वे घृणित और अप्राकृतिक कार्य करते हैं, जैसे सदोम और अमोरा के लोग अनैतिकता में मगन थे। आज भी अनेक स्थानों में मसीही जन समलैंगिक संबंधों को स्वीकार करते हैं। मेरे मित्रों, स्मरण रखें कि परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को दंड दिया। ये दो नगर थे जो समलैंगिकता में बहुत अधिक आगे बढ़ गए थे और परमेश्वर को उन्हें दंड देना पड़ा। पतित स्वर्गदूतों का दंड के लिए रखा जाना भी हमारे लिए एक चेतावनी है। परमेश्वर ने अपनी चुनी हुई प्रजा इसराइल को भी अविश्वास के कारण प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं करने दिया था। जी हां, यह सब हमारे लिए सावधानी रखने हेतु उदाहरण है। परमेश्वर आज की नई नैतिकता का दंड अवश्य देगा। आज की नैतिक नई नहीं है, यह तो सदोम और अमोरा के युग तक और नूह के युग तक की पुरानी बात है। मेरे प्रियो, आज आप किस प्रकार के नैतिकता में अपना जीवन बिता रहे हैं? आज संसार समलैंगिकता को स्वीकार कर रहा है, जो कि परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है, और यही कारण है कि परमेश्वर ने सदोम और अमोरा नगर को नाश किया था। मेरे मित्रों, आज समय आ गया है कि हम अपने जीवन को जांचें, उस महान परमेश्वर की ओर अपने नजरों को उठाएं और उन झूठे भविष्यद्वक्ताओं से, उन झूठे शिक्षकों से अपने आप को बचाएं, सत्य को ढूंढें। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यदि आज आप इन सारी बातों से बचना चाहते हैं, तो आप प्रभु यीशु के पास आ जाएं, क्योंकि वही आपको बचा सकता है, आपको नया जीवन दे सकता है। मेरे प्रियो, यह हम सब के लिए एक चेतावनी है कि यहूदा हमें इस बात का स्मरण कराता है। यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है और आप अपने जीवन के लिए एक उत्तम निर्णय लेंगे, ताकि आप परमेश्वर की निकटता में बने रहें। प्रभु आपके निर्णय पर आशीष दे और आप सबकी सहायता करे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, यीशु तू है महान, तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, हे यीशु तू है महान, तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। जब मैं गुनाहों में पड़ा, तेरे प्रेम से मैं दूर था, तेरे सन्मुख आने के लाया मैं कदापि योग्य न था। जब मैं गुनाहों में पड़ा, तेरे प्रेम से मैं दूर था, तेरे सन्मुख आने इसलिए मसीहा होठों से अपनी स्तुति तेरी करूंगा। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, हे यीशु तू है महान, तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। तेरे अनुग्रह तेरी दया को कैसे भूलूं मैं मसीह, मेरे श्राप को तूने हटा कर खुद श्रापित बना मसीह। तेरे अनुग्रह तेरी दया को कैसे भूलूं मैं मसीह, मेरे श्राप को तूने हटा कर खुद श्रापित बना मसीह। तूने क्रूस पर लहू बहा कर मुझे पापों से शुद्ध किया, मेरे आंसुओं को पोंछ कर सारे दुख दूर किया। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, यीशु तू है महान, रहेगी।